أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات محترم آج ہم سچائی پر گفتگو کریں گے اور سچائی کی اہمیت اور اس سلسلے میں زبان کی حفاظت پر گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور ہم سب کو اس حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ دور بڑا عجیب دور ہے. پورے معاشرے میں جھوٹ رچ بس گیا ہے. چھوٹا بڑا ہر ایک اس گھناؤنے جرم میں ملوث ہو جاتا ہے, خواہ وہ سربراہ مملکت ہو, بظاہر تعلیم یافتہ ہو یا طبقہ جہلا سے تعلق رکھتا ہو. اس معاملے میں کوئی احتیاط نہیں کی جاتی. یہ چھوٹا سا جسم کے اندر عضلاتی عضو جسے ہم زبان کہتے ہیں, اس کا ہم بڑا بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور بڑی بد احتیاطی کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں. کبھی کبھی ہم اس زبان سے کسی کے دل پر ایسی کاری ضرب بھی لگا دیتے ہیں جس کا زخم مرتے دم تک اس کے ساتھ رہتا ہے. بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو اسی زبان کی بد احتیاطی کی بدولت ہو جاتے ہیں. اس بد احتیاطی کے نتیجے میں ہی جھوٹ بولا جاتا ہے, اسی بد احتیاطی کے نتیجے میں غیبت کی جاتی ہے, اسی زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے چغلی کی جاتی ہے, اسی زبان کا بے درغ استعمال کرتے ہوئے بہتان لگا دیا جاتا ہے. جبکہ احادیث مبارکہ میں ان سارے معاملات میں بڑی وعیدیں آئی ہیں. آج ہمیں اس بات پر سوچنا ہے کہ کس طرح سے ہم اس معاملے میں احتیاط کریں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس احتیاط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات آپ غور کریں گے کہ گناہ کے اندر نفس کو بڑی لذت محسوس ہوتی ہے. کسی کی غیبت کریں تو آپ کے نفس کو بڑا سکون ملتا ہے, کسی پہ بہتان ترازی کریں تو نفس بڑا خوش ہوتا ہے, کسی کی چغلی کی جائے تو نفس کو بڑا سرور ملتا ہے. اور یہ ایک ایسا بے لگام گھوڑا ہے نفس امارہ کہ اگر اس کو لگام نہ دی جائے تو یہ جہنم کے آخری درجے پر پہنچا دیتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ آخر ہم کس وقت کیا کر رہے ہیں. میں بھی سوچ رہا ہوں, آپ بھی سوچیں, کیونکہ میں بھی اسی کشتی کا مسافر ہوں اور بتقاضا بشریت ہم سب سے یہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے. تو کوشش کی جائے کہ جتنا بھی ہم اس سے بچیں اتنا اچھا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ جب بھی اس میں احتیاط سے کام لیں گے, ہم اس میں احتیاط سے کام لیں گے تو دوسرے کے لیے ہم جو ہے وہ صاحب امن بن جائیں گے, دوسرے کے لیے ہم سکون کا باعث بنیں گے. اور جب ہم اس میں احتیاط نہیں کریں گے تو ہم خود سراپا ایک فتنہ بن جائیں گے. لوگوں کے لیے ایک زحمت بن جائیں گے اور لوگ ہم سے پناہ مانگنے لگیں گے. اس وقت اس معاشرے کے اندر اس چیز کو, جھوٹ کو, بہتان ترازی کو اس قدر رواج دے دیا گیا ہے کہ احتیاط کے باوجود بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو بچایا جائے. میں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات اتارنے کی کوشش کروں گا. ہمارا روزمرہ کا معمول ہے کہ ہم صبح اٹھ کر اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں اور اخبار پڑھنے کے بعد ہم خبروں پر تبصرہ کرتے ہیں. بعض مضامین ان خبروں کے پر تبصرے کے طور پر لکھے جاتے ہیں اور حقیقتاً ان خبروں میں سچائی نہیں ہوتی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. میں نے گزشتہ نشست میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اس وقت موجودہ اخبارات اور میڈیا جو غیر مسلم یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہیں, وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی کردار کشی کی جائے, مسلمانوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جائے, مسلمانوں کو بدنام کیا جائے. اس سلسلے میں ایک رہنما اصول میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں ملتا ہے. فرمایا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے بات آگے بڑھا دے. چند کلموں میں میرے آقا نے کتنی بڑی بات بیان فرما دی کہ جو خبر, جو بات تم تک پہنچے, جب تک تم اس کی تصدیق نہ کر لو, تمہیں اس کی تحقیق نہ ہو جائے, تم اس کو آگے نہیں بڑھاؤ. جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی بھی عزت کو خاک میں ملانے کے لیے اخبار میں دے دیا جاتا ہے, فوٹو دے دیے جاتے ہیں, کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کی عزت کو اچھالا جاتا ہے تاکہ اس کو معاشرے میں بدنام کر دیا جائے. اور ہم لوگ اس معاملے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے. جو خبر پڑی اس کو سمجھ لیا کہ ہاں یہ بالکل سچ ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں, آپ کسی کتاب کا مطالعہ کریں, آپ کسی اخبار کا مطالعہ کریں, اور آج کے میڈیا کے دور میں آپ کسی چیز کو دیکھیں بھی, مثال کے طور پر اگر آپ کسی خبروں کو میں کسی کی تصویر دیکھ رہے ہیں, کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, تو ضروری نہیں کہ وہ سچی ہو, اس میں بھی جھوٹ کا امکان ہو سکتا ہے. ہر چیز دیکھنے کے باوجود اور پڑھنے کے بعد فوراً اس پر یقین کر کے اس کو آگے بڑھا دیا جائے اور ایک دوسرے مسلمان کو غلط قرار دے دیا جائے اور اس کی کردار کشی کی جائے, یہ ہماری زبان کی بد اعتیادی ہوگی. ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کے اندر واقعی کوئی عیب بھی نظر آ جائے تو اسلام کہتا ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالو. آج تم کسی کے عیب پر پردہ پوشی کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیبوں کی پردہ کو پیش پوشی کرے گا. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو کہہ سکے کہ جی میرے اندر کوئی عیب نہیں. بے عیب ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, لیکن ہم اپنی زبان کو اس معاملے میں لگام دیے بغیر کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی کسی کے بھی عیب سے مطلع ہوں تو فوراً آگے بڑھا دیں اور اس کی کردار کشی کی جائے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت ہمارے اوپر جو یہود و نصارہ کے میڈیا کی یلغار ہے, वो हमें इस मामले में बहुत ज्यादा गुनाहगार कर रहे हैं। मिसाल एक आपको दूं, अभी दो दिन पहले की खबर है, मैं एक दुनियावी खबर पर आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जुए के इल्जाम में सजा दे दी गई, मशहूर खबर है, हमारे सारे अखबारात ने उसको शह सुर्खी से लगाया, तमाम चैनल ने उसको दिखाया और सब ने उन पर लान तान की और कहा कि ये पाकिस्तान की बदनामी है। कभी हमने थोड़ी देर के लिए सोचा, मैं ये नहीं कहता कि ये खबर गलत है, मुकम्मल के तौर पे मैं इसका इनकार कर दूं कि हाँ ये गलत हो, लेकिन कभी हमने अपने मुसलमानी जहन से सोचा, इस्लामी जहन से सोचा कि ये जो सजा दी गई है ये सजा एक यहूदी अदालत ने दी है, एक यहूदी और नसरानी अदालत ने दी है, जरूरी नहीं कि हमारे मुसलमान भाई ने भी वो जुर्म किया हो, सिर्फ हमारे मुसलमान भाइयों को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में इसकी तशहीर की गई ताकि दुनिया पर यह बात साबित हो जाए कि माज़अल्लाह मुसलमान जुआरी हैं, जुआ खेलते हैं। वो कौम जिसके बादशाह और सरबरा से लेकर आम आदमी तक शराबी जानी और जुआरी हैं, जहां पर इन घिनौने गुनाहों को कानूनी हैसियत हासिल है, वो कौम हमारे मुसलमान भाइयों पर ये इल्जाम लगाकर उनको सजा देकर पूरी दुनिया में रुस्वा कर रही है। कभी हमने सोचा कि यहूद नसारा की बात पर हमने कैसे यकीन कर लिया और अपने मुसलमान भाई पर हम फौरन लानतान करना शुरू हो गए? ये बात जहन में रखा करें कि ये खबर आ कहां से रही है। ये वही अदालत है जिसने आपकी बहन डॉक्टर आफिया को 80 बरस की सजा दी है, 80 बरस की सजा दी है, ये वही अदालत है। आज हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हम झूठों को झूठा कह सकें, हम अपने मुसलमान भाई को सब कुछ कहने के लिए तैयार हैं लेकिन उस यहूद और नसरानी कौम को कुछ कहने के लिए तैयार नहीं? कि नहीं, वो तो बड़े सच्चे होते हैं। कितने अफसोस की बात है, जैसे ये खबर आई थी हमारा रद्द अमल ये होना चाहिए कि हम ऐसी सजा पर यकीन नहीं रखते इसलिए कि ये गैर मुस्लिमों ने सजा दी है, यहूद और नसारा ने इल्जाम लगाया है और वो कोई भी बात साबित करने के लिए अपने मीडिया को इस्तेमाल करते हैं जो झूठा है। आज हमारा ईमान कितना कमजोर हो गया कि हम उनको सच्चा कहते हैं, जो भी बात होगी हमें नहीं नहीं वो लोग झूठ नहीं बोलते। अरे कितने अफसोस की बात है, हम उस कौम को सच्चा कहने लगे जो कौम हजरत ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा कहती है, माज़अल्लाह, क्या ये सच है? ईसाई हजरत ईसा अलैहि सलाम को क्या कहते हैं? अल्लाह का बेटा, माज़अल्लाह। यहूदी हजरत उज़ैर अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, माज़अल्लाह, क्या ये सच है? जो कौम अपने मजहब के मामले में सच्ची ना हो वो अपनी दुनिया के मामले में कैसे सच्ची हो सकती है? वो झूठे हैं और मुसलमानों के अंदर झूठ को आम करने में लगे हुए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कभी उस खबर के ऊपर यकीन नहीं करना जो खबर तुम्हें यूरोप से या यहूद और नसारा की तरफ से आए। पहले ये सोचना कि इसमें कहीं हमारे मुसलमान भाई की इज्जत को खाक में तो नहीं मिलाया जा रहा, हमारे मुसलमानों की इज्जत और आबरू को उछाला तो नहीं जा रहा। अगर ऐसा नजर आ रहा है तो समझ लो कि यह उनकी साजिश है। वो ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान हर शोबे में करप्ट हैं, अपने सारे ऐबों पर पर्दा डालने के लिए जब उनकी कौम आपे से बाहर हो गई, जब उनकी कौम जिना पर काबू नहीं पा सकी, जब उनकी कौम जुए के अड्डों पर काबू नहीं पा सकी, जब उनकी कौम शराब नोशी में मुलव्विस हो गई, अब वो एहसास कमतरी का शिकार होकर इजहार बरतरी करने लगे कि ये तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी कि मुसलमानों के ऊपर ये होगा कि मुसलमान झूठ को बुरा समझते हैं, शराब नोशी को बुरा समझते हैं, जुआ खेलने को बुरा समझते हैं, लिहाजा जो भी मुसलमान ऐसा काम करे या उससे किसी तरह करवाया जाए तो फौरन मीडिया पर दे दो, क्योंकि मीडिया तो अपने घर का कुत्ता है, उसको इस्तेमाल करो और पूरी दुनिया में मुसलमानों को रुस्वा करने की कोशिश करो। ये बात आपको जहन में रखनी होगी कि हमें अपनी सोच को इस्लामी सोच बनानी होगी। हम कोई खबर पढ़ें तो उसमें ये सोचें कि इसमें मुसलमान का फायदा है या नुकसान, उस मुसलमान से आपके कितने इख्तलाफात हों लेकिन इतना आप उसको जरूर हमदर्द, उससे आपको जरूर हमदर्दी होगी कि वो आपके आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला है। वो यहूदी या नसरानी नहीं, अगर वो यहूदी नसरानी नहीं तो वो हमारे दिल में जगह रखने के काबिल है। इसलिए मीडिया की इस जलगार का कम अज कम अपनी अपनी जात से मुकाबला करें, सोचें कि ये झूठ का पुलिंदा हमारे सर पर डाला जाता है और हमारा क्या हाल है कि देखो कितना अफसोस की बात है कि हमारे खिलाड़ियों ने ऐसा कर दिया। अभी तक हमारी उन किसी खिलाड़ी से मुलाकात नहीं हुई, उनको बयान देने की इजाजत नहीं है और उनका इकरार जुर्म भी उन्हीं के मीडिया ने हम तक पहुंचाया है। हमें नहीं पता कि आया उन्होंने कोई इकरार जुर्म किया है या नहीं किया है या नहीं, तो फिर हमने कैसे यकीन कर लिया। मेरी बात सोच रहे हैं, समझ रहे हैं आप कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अजीजाने गिरामी, इस खानकाह की निस्बत से हमें अपने समाज को, अपनी बसारत को, अपनी जबान को, सबको इस्लामी बनाना होगा और अपनी जबान की हिफाजत करनी पड़ेगी। किस तरह? अगर किसी की कोई ऐब की बात पहुंची तो उसको वहीं पर अपने तक महदूद कर दिया, आगे नहीं बढ़ाएंगे। एक और मिसाल मैं आपको दूं, हमारे यहां क्या होता है कि जैसे ही पाकिस्तान के अंदर कोई सरबरा बना उसी दिन से उसकी किरदार कशी शुरू कर दी गई। होती है, बहुत गुनाहगार हैं, सब सियाकार हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारे गुनाह हैं, लेकिन उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया और उस पर तबसीरें शुरू हो गए। आप देखें कि बरतानिया की सरजमीन पर वहां के कालों ने वो सब कुछ किया जो पाकिस्तान में हंगामों में होता है, दुकानें भी लूटी, बैंक भी लूटे, हजारों पाउंड्स सड़कों पर बिखर गए और लोग लूट के ले गए, गाड़ियां भी जलाई गईं, लेकिन आपने देखा कि चंद दिनों के बाद मीडिया से इसको हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, इसलिए कि यह उनकी खबर थी। और हम अपने हर अपने मुसलमान भाई के हर ऐप के ऊपर गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सोचना पड़ेगा जब आपकी जबान से, हमारी जबान से कोई अल्फाज निकल रहा हो तो ये जहन में रखें ये कहीं ये झूठ तो नहीं है। आप कहेंगे भाई ये तो फलाने कहा है, अगर फलाने कहा है तो वो सच्चा है कि नहीं है? जरूरी नहीं कि वो सच्चा हो, उसने जो बात आपसे कही आपने आगे बढ़ा दी। अगर वो सच्चा भी था और उसने आपको कही भी तो जरूरी नहीं कि हम उस बात को आगे बढ़ाएं कि हमारे अपने मुसलमान भाई की कोई किरदार कशी हो जाए, अपने मुसलमान भाई की इज्जत नफ्स को मजरूह कर दिया जाए। एक बात मैं और आपको एक मिसाल दूं, बहुत से लोग अपनी एक खराबी को बड़ी अच्छी अच्छाई समझते हैं। बड़ी तवज्जो से ये बात सुनें, वो कहते हैं जो भी हमारे दिल में होता है ना जी हम तो फौरन कह देते हैं, दिल में नहीं रखते कोई बात, ये अपनी अच्छाई बयान करते हैं। और फिर अगला लफ्ज़ क्या कहते हैं, हम में मुनाफ़क़त नहीं है, जो दिल में होता है वो मुंह पे कह देते हैं। सुना होगा आपने बहुत सारे लोगों से। एक बात ज़हन में रखें, जो बात भी आपके दिल में हो और आपकी ज़बान पर आ रही हो, उस वक्त ये सोचें कि आपकी ज़बान से जो बात निकल रही है, आया उससे किसी की दिलाज़ारी तो नहीं हो रही। अगर दिलाज़ारी हो रही है तो इससे बेहतर है कि आप वो बात ज़बान से निकालें, अपने दिल में ही रखें। अच्छा, ऐसे लोगों की एक बात बड़ी अजीब होती है कि वो अपनी दिल की बात तो फौरन ज़बान पर ला के कह देते हैं, जो दिल में होता है मुंह पे कह देते हैं। लेकिन अगर उसका मद्दे मुकाबिल यही काम उसके साथ करे कि अपने दिल की बात आपसे कह दे, तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती। क्यों हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये हमारे किरदार में कमी की बात नहीं कि जो बात हम दूसरे के लिए समझते हैं कि उसके दिल पे कुछ भी हो, कुछ भी असर हो, हम तो कहेंगे क्योंकि हमारे दिल में है, तो उसके दिल में जो है वो जो ज़बान पे ला रहा है उसको हम क्यों बर्दाश्त नहीं करते? ये कमी है कि नहीं है? अगर हम ये समझते हैं कि हम अपने दिल में कोई बात नहीं रखेंगे, जो दिल में होगा वो मुंह पे कह देंगे, तो अगर अगला भी हमें अपने दिल की बात मुंह पे लाकर कह दे तो हम उसको बर्दाश्त करें। सोचें कि ये काम हम भी तो कर चुके हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते और हमारे अंदर बर्दाश्त की आदत नहीं, तो बेहतर है कि हम अपनी ज़बान पर कंट्रोल कर लें। जब हम अपनी दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करते तो हो सकता है हमारी बात भी दूसरे को बर्दाश्त ना हो। ये इस्लाम की एक तालीम है कि कोशिश करो कि तुम्हारी ज़बान से, सरकार ने फरमाया कि तुम्हारे हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान सलामत रहे। ये मुसलमान वो है, सरकार फरमाते हैं मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान सलामत रहे। कितनी प्यारी बात फरमाई। आज ना हम अपने हाथों से दूसरे मुसलमान की हिफाजत करते हैं, ना अपनी ज़बान से दूसरे की हिफाजत करते हैं। हमारे हाथ भी दूसरों को तकलीफ़ देने के लिए तैयार हैं और हमारी ज़बान भी दूसरों को तकलीफ़ देने के लिए तैयार है। तो हम कैसे मुसलमान हुए? सरकार की हदीस के मुताबिक तो मुसलमान की तारीफ में ये बात शामिल है कि दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे और हम दूसरे को तकलीफ़ देते हैं। तो दोस्तों और बुज़ुर्गों, आइए इस छोटे से लोथड़े की हिफाजत करें जो मुंह के अंदर है। 32 दांतों के बीच में बड़ी बेबाक चीज है। लोग मिसाल देते हैं ना कि जी 32 दांतों में काम करता हूं, यानी सर मेरे इतने मुखालिफ हैं उनके बीच में मैं काम करता हूं। ये जबान वही है, 32 दांतों के बीच में रहती है लेकिन चलती रहती है और इसका बेदरक इस्तेमाल होता है। मैंने जब गौर किया, सोचा कि इसकी हिफाजत कैसे की जाए। मैं तो खुद एक बहुत बोलने वाला आदमी हूँ, गुनाहगार आदमी हूँ, मैं अपनी इस्लाह किस तरह करूँ, कोशिश करूँ कि मैं इस पर, तो मुझे बुजुर्गाने दीन का निज़ाम तालीम बड़ा प्यारा लगा और खानकाह का निज़ाम तालीम अच्छा लगा। उन्होंने इसके लिए औरादो वज़ाइफ दे दिए, इतना ये पढ़ लो, इतना ये पढ़ लो, इतना वो पढ़ लो। जब तक पढ़ते रहोगे तुम ना झूठ बोलोगे, ना गीबत करोगे, ना चुगली करोगे, ना बोहतान दरादी करोगे, और जो कुछ पढ़ते रहोगे वो इबादत होगी। इबादत में लगे रहोगे, गुनाहों से भी बचोगे और सवाब की तरफ भी जाते रहोगे। तो ये चीज़ बड़ी अहमियत रखती है और हम इन छोटी छोटी बातों पर वो नहीं करते हैं। अगर हम आजकल, मैं एक बात और देख रहा हूँ, मैसेज का दौर है, SMS किए जाते हैं, इसमें भी हम बड़ी एहतियाती से काम लेते हैं। अगर मेरी किसी से दुश्मनी है या कोई मुझे पसंद नहीं, तो मैं उसको फर्जी मामलात में मुलव्विस करके एक मैसेज कर दूंगा, झूठ है। उमूमन एक चीज देखी जा रही है कि आज हमारे यहाँ जो पहचान बन गई है माजल्ला मुसलमानों में वो लिसानियत है। अगर कोई महाजिर है तो वो पठान से तासुब, जो पठान है तो वो महाजिर से तासुब, सिंधी है तो पंजाबी से, है ना आपस में। हम इस्लाम से के रिश्ते से ना मोहब्बत कर रहे हैं ना इस्लाम के रिश्ते से नफरत कर रहे हैं। अब क्या है कि कोई उर्दू बोलने वाला है तो वो जो मैसेज जा रहे हैं लताइफ के उसमें पठान को मुलव्वस कर रहा है, कोई पठान है तो वो उर्दू स्पीकिंग वाले को मुलव्वस कर रहा है। हालांकि हमें पता है कि ये जो कुछ लिखा जा रहा है ये झूठ है ना, ये तो पता ही है हमें। हम फौरन खुशी के साथ अगले को बताते हैं और हंसी मजाक करते हैं हालांकि वो झूठ है। अभी तक लिखा हुआ था हमने फौरन उसको जबान पर लाए और दूसरे के मुतालिक का बड़ी दौर से हंसी हुई और हम खुश हो गए, चलो हमने हंसा दिया। झूठ बोलकर हंसाने की भी हदीस शरीफ में ममानियत आई है, तो ये भी एक झूठ है जो माशरे के अंदर मुसलसल आम हो रहा है। अगर सदर मुमलिकत से इख्तलाफ है तो उनका एक मैसेज बन गया, वो चलना शुरू हो गया और हम ये नहीं सोचते कि हम किसी शख्सियत के को फायदा पहुंचा रहे हैं या नुकसान। हम बज़ाहिर उससे नफरत करते हैं लेकिन उसके गुनाह धो रहे हैं, उसकी गीबत करके उसके गुनाह धो रहे हैं और अपने नामा आमाल को खराब कर रहे हैं। तो ये एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ है इस मोबाइल के ऊपर। झूठ बोला जाता है, झूठ लिखा जाता है, झूठ पर तबसरा किया जाता है। एक और बात आप गौर करें कि टीवी है, आगे चैनल पे आ जाएं या आगे और दूसरे मामलात पे देखें कि ड्रामे बनते हैं, उसमें किरदार बनते हैं कि फला फला शख्स फला औरत का शौहर है, फला भाई है, फला बेटा है, हालांकि वो झूठ है। हमें पता है कि ये लोग आपस में कोई रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन हम उससे सुकून महसूस करते हैं माज़अल्लाह देखकर। झूठ देखते हैं ना, ये झूठ ही तो हुआ, झूठ देखकर हमें सुकून महसूस होता है। पहले खाली बोलते थे, अब देखने भी लगे हैं। पहले ये तसव्वुर नहीं था कि झूठ देखा जाए, लेकिन अब झूठ देखा जाता है, नहीं देखा जाता है। वो उसको अपना बेटा कह रही है हालांकि वो उसका नाम अहरम है, वो उसको अपना शौहर कह रही है हालांकि वो उसका नाम अहरम है, वो उसको अपने अपनी बीवी कह रहा है हालांकि वो इसका नाम अहरम है। तो खुद सरापा झूठे होकर किरदार बन गए और हमने झूठ को देखना शुरू कर दिया। झूठ बोला गया, झूठ देखा गया, और जिन्होंने लिखा उसके ऊपर उन किरदारों को अवार्ड दिए जाते हैं। किस बात पर? जिसने सबसे अच्छा झूठा किरदार अदा किया उसको इनाम दिया जाएगा। तो ये तो शैतान का काम है। फिर उसके ऊपर तबसरा लिखा जाता है। झूठ बोला गया, झूठ देखा गया, झूठ पे तबसरा लिखा गया, हर चीज में झूठ को इन्वॉल्व कर दिया गया। तो हमारे अंदर रूहानियत कैसे आएगी? हम खुद सरापा गुना बनते जा रहे हैं। तो इसमें एहतियात इसी बात में है कि अपने आप को फजूलियात से रोक कर अपने आप को किसी न किसी तरह किसी इबादत में मसरूफ कर लिया जाए या किसी काम में मसरूफ कर लिया जाए जो तामीरी काम हो, उससे किसी दूसरे का भला हो, किसी को फायदा पहुंचे, तो उससे आपके अंदर आपकी रूहानियत के अंदर इजाफा होगा और कल्ब को सुकून महसूस होगा और कल्ब में एक रोशनी पैदा हो जाएगी। जब किसी मुसलमान के साथ हम भलाई का इरादा करेंगे और उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब हम कम से कम एक काम करें कि हमारे पास अभी इतनी इस्तेआत नहीं है मिसाल के तौर पर हम कि किसी को फायदा पहुंचाए, इतना माल नहीं है कि हम उसको माली फायदा पहुंचाएं, कोई मकान नहीं दे सकते, कोई पैसा नहीं दे सकते। तो हम पहला काम ये करते हैं कि हम जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, आज से हम उस तकलीफ पहुंचाने से अपने आप को बाध रखेंगे। ये काम हमारा पहला काम होगा जो हम सब कर सकते हैं। जो हम खामखाई दूसरों को तंग करने की कोशिश करते हैं या तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हम वो नहीं करेंगे। और वो क्या है, एक तो वही बात कि जो दिल में आई फौरन कह दी, खट से किसी को बेचारे को तकलीफ पहुंचे या अफसोस हो कि इतने ऐसा क्यों कह दिया, ये कोशिश करें कि ऐसा नहीं कहते, या उसकी तबीयत देखकर मोहब्बत के साथ उसकी इसलाह के लिए ऐसा अंदाज इख्तियार किया जाए कि उसकी इसलाह भी हो जाए और उसकी इज्जत नफ भी मजरू ना हो, तो वो फौरन उस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाएगा। यही कैफियत, यही सूरत हाल बारगाह रिसालत में होती थी। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह सहाबे किराम की तरबियत फरमाया करते थे। अरब के वो लोग जो अपने किरदार और गुफ्तार की बिना पर सबसे बुरी कौम समझी जाती थी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी 63 साल हयात मुबारक में सिर्फ 10 साल मक्के मुअज्जमा में और 13 साल मदीने तैयबा में, 40 साल निकाल दें 10 साल मदीने मुनव्वरा में और 13 साल मक्के मुअज्जमा में, 63 साल में से सरकार ने 40 साल आप हटा दें तो 23 साल बचेंगे। 40 साल खामोशी के साथ अपने किरदार को दिखाकर इस्लाह की और बकिया 23 साल अपनी जबान हक तर्जुमान से इस्लाह फरमाई। 63 साल जिंदगी में पूरे माशरे को तब्दील करके रखते। सहाबे किराम एहतियात करते थे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्होंने अपनी जबान को पकड़कर खींचते थे कि ये किस तरह से इसको संभाला जाए, बताते थे। बताना वो सहाबा जो अशरा मुबशरा में से थे, सरकार ने उनको जन्नत की बशारत दी, वो इतना खौफ रखते थे कि हम अपनी जबान का कोई गलत इस्तेमाल ना कर दें। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज सिर्फ जबान पर ही गुफ्तगू हुई और सच्चाई की तरफ कि हम जो कोई खबर पढ़ें उसके ऊपर भी गौर करें कि आया ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है या मुसलमानों की हक में खबर है, तो ऐसे मामलात के अंदर एहतियात करें। अगर कोई ऐसी खबर पड़े भी तो ज़रूरत नहीं कि हम उसको आगे फैलाएं। ये इस वक्त किरदार एक दूसरे मुसलमान की किरदार कशी का ज़रिया बन गई। तो हम अपने ऐबों पर नज़र रखें, हमारे अंदर बड़े ऐब हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अपने ऐबों पर किसी को गवाह भी नहीं बनाना चाहिए, तो अपने ऐबों पर नज़र रखें कि आया मैं क्या कर रहा हूँ, बजाय इसके के दूसरे के ऊपर गौर करें। दूसरा, बहुत कुछ हमेशा हमारी नज़रें दूसरों के ऐबों पर होती हैं। किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि आप किसी के मुताल्लिक आप कुछ नहीं राय देते, फरमाया अपने ही हाल से फुर्सत नहीं, अपनी खराबियों से फुर्सत नहीं देखने की, तो मैं दूसरों को क्या देखूं और दूसरों को क्या कहूं। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आइए हम सब उन बुजुर्गान दीन की सीरत मुबारक पर और खुसूसन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर अमल करें, अपने किरदार को भी मजबूत करें, अपनी गुफ्तार को भी मजबूत करें, मुसलमान बनकर पढ़ें, मुसलमान बनकर सोचें और उन लोगों को, उस कौम को कभी सच्चा ना समझें जो गैर मुस्लिम कौम है। अपने ईमान को मजबूत करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। वाखर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक बात मैं और अर्ज़ कर दूं कि ये बात कि हम उस कौम को सच्चा भी कहते हैं और उस कौम को ईमानदार भी कहते हैं, बहुत सारे लोगों से सुना है कि जी वो लोग मुसलमान नहीं है, बाकी सारी बातें वो ईमानदारी की करते हैं। ठीक है, बहुत सी अच्छी बातें भी होंगी, लेकिन बेईमानों को हम ईमानदार कहते हैं, जो हमारे नबी को नबी ना माने और अपने नबियों को खुदा का बेटा माने, हम उनको कैसे सच्चा कह दें, कैसे उनको ईमानदार कह दें। इसलिए ये बात ध्यान में रखें, कोई आपसे कहे तो उनसे कहें वो सबसे झूठी कौम है, वो कह नहीं वो लोग झूठ नहीं बोलते, तो उनसे पूछें बताएं क्या हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, माजल्ला हजरत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, कह नहीं अल्लाह ताला तो औलाद से पाक है, कि वो ये कहते हैं, आप उनको सच्चा कह रहे हैं तो आप खुद बेईमान हो जाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको माफ़ फरमाए। दुआ करें अल्लाह तबारक व ताला हम सब के ईमान को मजबूत फरमाए। इलाहुल आलमीन, इस वक्त जो आलम इस्लाम पर यहूद व नसारा की यलगार है, बारी ताला मुसलमानों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए, मुसलमानों की जान माल की हिफाजत फरमाए। इलाहुल आलमीन, इस वक्त मुसलमानों के अंदर जो यहूदी नसरानी एजेंट हैं, बारी ताला उनके चेहरों से नकाबों को उठा दें, हम अपने दुश्मनों को पहचान सकें। इलाहुल आलमीन, हमें रसूलुल्लाह की ग़ुलामी अता फरमा, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत अता फरमा, हमारी सोच को मुसलमान बना दे, हमारी फ़िक्र को मुसलमान बना दे। इलाहुल आलमीन, हमें दीन इस्लाम से मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।